प्रिय छात्रों, सुभाषिस बधाई कि आप 11th कक्षा क्रमोन्नत कर कक्षा 12th में आ चुके हैं। 12th बोर्ड क्लास हैं, इसलिए विशेष रूप से आपको पढ़ाई पर अभी से ध्यान देना होगा। जो भी ऑनलाइन क्लास के अंदर पाठ्यक्रम बताया जा रहा है, टॉपिक पढ़ाया जा रहा है, उसको बारीकियों से रफ कॉपी में नोट्स वाइज लिखें, समझें, याद करें। मैं बख्तावर सिंह राठौड़, व्याख्याता इतिहास, श्री बालाजी पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल बावड़ी जोधपुर। इतिहास के अंदर कुल 7 अध्याय हैं। पहले अध्याय के बारे में आज थोड़ी चर्चा करेंगे। पहले अध्याय का नाम है भारत का वैभवपूर्ण अतीत, जो 10 अंक का अध्याय है। इस पाठ से 1 नंबर के, 2 नंबर के और 4 नंबर के प्रश्न बनते हैं अर्धवार्षिक के अंदर और वार्षिक के अंदर। महत्वपूर्ण अध्याय है और भारत के बारे में हमें अनेक जानकारियां देता है ये पाठ। पाठ का नाम है भारत का वैभवपूर्ण अतीत। अतीत से तात्पर्य है बीता हुआ समय, बीते हुए समय की बातें, घटनाएं आदि जो हम जानते हैं वो अतीत कहलाता है। भारत को वैभवपूर्ण कहा गया है, क्यों, किन कारणों से भारत का इतिहास वैभवपूर्ण है, वैभवशाली है, इसके प्रमुख तथ्य स्रोत हमें इस पाठ के अंदर देखने को मिलते हैं। भारत भूखंड एक भौगोलिक इकाई के रूप में है। भौगोलिकता से तात्पर्य भूमि से, अलग अलग प्रांत क्षेत्र के अंदर भौगोलिकता अलग अलग प्रकार से दिखती है और ये पूरा खंड जो है वह भारत है। विष्णु पुराण के अंदर हमें यह जानकारी मिलती है, विष्णु पुराण में लिखा हुआ है कि समुद्र के उत्तर में बर्फीली चोटियों से लेकर दक्षिण में जो प्रदेश हैं समुद्र तट तक, इसके बीच का जो भौगोलिक भूमि का भाग जो है उसे भारतवर्ष के नाम से जाना जाता है। ये जानकारी हमें विष्णु पुराण का अध्ययन करते हैं तो उसमें मिली है कि उत्तर में बर्फ की प्रदेशों से लेकर दक्षिण में जो समुद्र है और इसके बीच का जो भूमि का खंड भाग है उसे भारतवर्ष कहते हैं। और इस भूभाग पर निवास करने वाली मानव जाति को ही भारत की संतान कहा गया है। कम से कम 15,000 वर्षों से यह देश सभ्य और सांस्कृतिक रूप से संपन्न रहा है। इस देश ने 2000 ईसा पूर्व से लेकर 650 ईसा बाद तक अपना जो ये काल है, इस काल का सबसे अच्छा और स्वर्ण युग माना गया है। 650 ईसा के बाद यहाँ अनेक विदेशी आक्रांताओं ने इस देश के वैभवशाली इतिहास और संस्कृति को धूल में मिला दिया। पुराणों की संख्या तो इस अध्याय में नहीं दी गई है, लेकिन पुराणों की संख्या 18 मानी गई हैं। सबसे प्राचीन जो पुराण हैं वह मत्स्य पुराण है, किंतु यह एक विवादास्पद है, क्योंकि मत्स्य पुराण 16 नंबर पर आता है और पहले नंबर पर जो पुराण है वह है ब्रह्म पुराण। इसलिए ब्रह्म पुराण सबसे प्राचीन होना चाहिए, लेकिन अधिकतर विवाद मत्स्य पुराण को ही सबसे प्राचीन पुराणों में माना गया है। और यह एक नंबर का प्रश्न भी बनता है कि सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है, तो हमें उत्तर के रूप में लिखना होगा मत्स्य पुराण। दूसरा प्रश्न बनता है पुराणों की संख्या कितनी है, तो उत्तर लिखना होगा 18। इन पुराणों में पाप और पुण्य, धर्म और अधर्म तथा कर्म और अकर्म की गाथाएं कही गई हैं। पुराण में हिंदुओं के धर्म संबंधी आख्यान ग्रंथ हैं, जिनमें संसार, ऋषियों, राजाओं के वृत्तांत आदि हैं। ये वैदिक काल के बहुत समय बाद के ग्रंथ हैं जो स्मृति विभाग में ये आते हैं। ये जानकारी हमें पुराणों में मिलती है। इसका अधिकांश जो भाग है भारत खंड का वह उष्ण कटिबंधीय वातावरण के क्षेत्र में आता है। बच्चों, आपको जानकारी होगी उष्ण कटिबंधीय भाग कहाँ देखने को मिलता है। ग्लोब जो है, पृथ्वी एक ग्लोब के रूप में है, अंडाकार आकृति में है, तो इस पृथ्वी को दो समान भागों में आडा विभाजित करने वाली जो रेखा है, उस रेखा का नाम जानते होंगे आप, बताइए। अच्छी बात है, जो जानते हैं, नहीं जानते हैं वो ध्यान दे लिखें। प्रश्न बनता है पृथ्वी को दो समान भागों में आड़ा कौन सी रेखा काटती है। तो पृथ्वी को आड़ा दो समान भागों में विषुवत रेखा काटती है। ऐसे ये ज्योग्राफी का टॉपिक है, लेकिन हमारे अध्याय में आया हुआ है उष्ण कटिबंधीय वातावरण, उसके बारे में बताना चाहूँगा। कॉपी में गोल वर्त बनाइए और उसे आडा समान भागों में विभाजित कर दें, एक बीच में आडी लाइन खींचें। जो आपने आडी लाइन खींची है उस रेखा का नाम है विषुववृत्त रेखा। इसका मान 0 डिग्री होता है, इसलिए इसे 0 डिग्री अक्षांश रेखाएं कहते हैं। अक्षांश रेखा जो रेखा पश्चिम से पूर्व की ओर खींची जाने वाली काल्पनिक रेखाओं को अक्षांश रेखाएं कहते हैं, और जो रेखा उत्तर से दक्षिण खड़ी जो काल्पनिक रेखाएं खींची जाती हैं उसे देशांतर रेखाएं कहते हैं। उष्णकटिबंधीय भाग में बताना चाहूँगा 0 डिग्री से ऊपर वाला जो आधा गोलार्ध है और 0 डिग्री से आधा गोलार्ध नीचे है, दो गोलार्ध हो गए, पृथ्वी के दो भाग हो गए। ऊपर वाला आधा गोला उत्तरी गोलार्ध के नाम से जाना जाता है और नीचे वाला दक्षिणी गोलार्ध के नाम से जाना जाता है। आधा गोला जो आपने 0 डिग्री अक्षांश रेखाएं खींची हैं, विषुवत रेखाएं खींची हैं, इसका अन्य नाम है भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा या 0 डिग्री अक्षांश रेखा। क्वेश्चन बनता है यहाँ पर, 0 डिग्री अक्षांश रेखा को कौन सी रेखा कहते हैं? तो उत्तर में आप लिख सकते हैं विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा। उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री जो रेखाएं हैं उसको कर्क रेखा कहते हैं। दक्षिणी गोलार्ध में 0 डिग्री से नीचे दक्षिणी भाग में 23.5 डिग्री जो रेखा है उसका नाम है मकर रेखा। छात्रों, मैं आपको बताना चाहता हूँ उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री से लेकर दक्षिणी गोलार्ध में 23.5 डिग्री यानी कर्क रेखा से लेकर मकर रेखा के बीच वाला जो भाग है उस भाग को उष्णकटिबंधीय भाग कहते हैं। यह भूमध्य रेखा के आसपास वाला भाग है। ऐसे ग्लोब में उष्ण का अर्थ होता है गर्म, कटी का अर्थ होता है स्थान, जगह। अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाएं जहां एक दूसरे को काटती हैं उसे कटी कहते हैं। उसके ऊपर उत्तरी गोलार्ध में 67.5 डिग्री रेखा और दक्षिण गोलार्ध में 67.5 डिग्री रेखा जिसे शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं, 90 डिग्री शीत कटिबंध उत्तरी गोलार्ध और दक्षिण गोलार्ध। उत्तर में, भारत के उत्तर में हिमालय पर्वतीय क्षेत्र हैं जिसमें अनेक प्रकार की पर्वत श्रेणियां शामिल हैं। छात्रों, यहाँ पर 2 नंबर का प्रश्न बनता है, हिमालय पर्वतीय क्षेत्र में स्थित कोई 4 या कोई 2 पर्वत श्रेणियों के नाम लिखिए। तो इसका उत्तर होगा बल्क, बदलखा, जम्मू कश्मीर, कांगड़ा, टिहरी, गढ़वाल, कुमायूं, नेपाल, सिक्किम, भूटान, असम व हिमालय की ऊंची अनेक छोटी बड़ी पर्वत श्रेणियां शामिल हैं। इस भाग को पश्चिम में हिंदू कुश, सफ़ेद को, तुकेमान तथा कीर्थर पर्वत श्रेणियों ने उत्तर से दक्षिण के विस्तृत भाग के अंदर ये फैली हुई है, जो पश्चिमी क्षेत्र से यह पृथक करता है। आज का ही टॉपिक था भारत का वैभवपूर्ण अतीत के बारे में थोड़ा सा परिचय, और कल अगली क्लास के अंदर अपन देखेंगे भारतीय इतिहास की जानकारी के स्रोत। थैंक यू।